नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस कल मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के पुरी में वार्षिक नौसेना दिवस समारोह में भाग ले रही है। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेवा के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई गई, वे सुरक्षित हैं। और मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो कल मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में तीसरी बार महायुति के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुंबई में आज भारतीय जनता पार्टी की कोर समिति की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की उपस्थिति में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। वित्त मंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। विधायक चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार के फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों का अभूतपूर्व जनादेश प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण में लोगों के विश्वास का स्पष्ट संदेश है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के विकास के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने विशाल जनादेश के लिए महायुति सहयोगियों और महाराष्ट्र के मतदाताओं को धन्यवाद दिया और एक है तो सुरक्षित है और मोदी है तो मुमकिन है के नारे दोहराए। श्री फडणवीस ने जोर देकर कहा कि उनके सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों से किए गए वादों को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि वे राज्य को हर क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन वाले इस सरकार में 11 मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और राष्ट्रीय जनता दल से 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद में और अधिक शोध करने का आह्वान किया है, क्योंकि ये लोगों के जीवन का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद उपचार से कई पुरानी बीमारियां ठीक हो जाती है, जिसे देश में बड़ी संख्या में लोग आज भी इस चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करते हैं। राष्ट्रपति ने ओडिशा के पुरी में गोप बंधु आयुर्वेद महाविद्यालय के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय देश में आयुर्वेद और योग को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, ताकि लोग बीमारियों से मुक्त और स्वस्थ रहे। राष्ट्रपति मुर्मू नौसेना दिवस पर ब्लू फ्लैग बीच पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए पुरी में हैं। राष्ट्रपति ने इससे पहले दिन में पुरी स्थित 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा अर्चना की। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहया आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री अल याहया 2 दिन के भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कुवैत के विदेश मंत्री की यात्रा से भारत कुवैत के बहुआयामी संबंध और मजबूत होंगे। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वे बाल बाल बच गए। उन पर हमला उस समय किया गया जब वे व्हीलचेयर पर स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्री अकाल तख्त द्वारा दिए आदेश का पालन करने के लिए गुरुद्वारे में सेवा के लिए जा रहे थे। गोली मारने की कोशिश करने वाले नारायण सिंह के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को एसजीपीसी सेवादरों और सुरक्षाकर्मियों ने गोली मारने के लिए अपनी पिस्तौल निकालने के तुरंत बाद काबू कर लिया। इस दौरान उसकी ओर से चलाई गई गोली गेट की दीवार पर लगी। सूत्रों के अनुसार नारायण सिंह को खालिस्तानी समर्थक बताया जाता है, जो 2003 और 2004 के दौरान चंडीगढ़ के बुंडेल जेल से कैदियों के भागने के मामले में शामिल था, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारों को रखा गया था। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस बीच अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि श्री बादल पर हत्या का प्रयास नारायण सिंह ने किया है। वो अपने साथ हथियार ले जा रहा था। प्रयास के पीछे किसी गहरी साजिश का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी दरकबीर सिंह ने बादल पर इस हमले को श्री अकाल तख्त पर हमला कहा है, क्योंकि श्री बादल श्री अकाल तख्त द्वारा दिए गए आदेश का पालन कर रहे थे। उन्होंने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है और पंजाब सरकार से इस प्रयास के पीछे की साजिश का पता लगाने को कहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भी बादल पर हमला की निंदा की है। पूर्व सांसद और सुखवीर सिंह बादल के पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी स्वर्ण मंदिर में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बित्तू ने पंजाब के स्वर्ण मंदिर में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमले की निंदा की है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री बित्तू ने घटना की जांच की मांग करते हुए कहा कि एक बार फिर पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि स्वर्ण मंदिर जैसे स्थान पर यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के महत्व पर बल दिया है। चीन के साथ भारत के संबंधों पर आज राज्यसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच चर्चा तनाव कम करने और प्रभावी सीमा प्रबंधन पर केंद्रित होगी। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल मई 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच टकराव पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि 2020 से भारत चीन संबंध असामान्य रहे हैं, जब चीनी कार्यों के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग हो गई थी। उन्होंने कहा कि अप्रैल मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करने के परिणाम स्वरूप कई बिंदुओं पर सेनाओं के साथ आमना सामना हुआ। इस स्थिति के कारण गश्ती गतिविधियों में भी बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि साजो सामान संबंधी चुनौतियों और कोविड की स्थिति के बावजूद भारत तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाबी तैनाती करने में सक्षम था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर गरीब व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2,95,00,000 मकान बनाने की स्वीकृति दी है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 38,00,000 घर आवंटित किए गए हैं। इसके लिए 10,600 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की गई थी। अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर विपक्ष ने आज राज्यसभा से वॉकआउट किया। आज सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, चक्रवात फेंजल, संभल हिंसा और एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वत के आरोपों के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को खारिज कर दिया। सभापति ने आश्चर्य व्यक्त किया, किसानों के मुद्दे पर पिछले सप्ताह कोई स्थगन नोटिस क्यों नहीं दिया गया और सदन का समय व्यवधान में बर्बाद किया गया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने श्री धनखड़ की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में वर्तमान चैंपियन भारत एक भी मुकाबला नहीं हारा है और टीम की नजर अपने 5वें और लगातार 3रे खिताब पर टिकी है। भारत ने सेमीफाइनल में दिलराज सिंह, रोहित और शारदानंद तिवारी के गोल की मदद से मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। पाकिस्तान ने जापान को 4-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में आज मेजबान भारत का मुकाबला ईरान से होगा। भारत का ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।